ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकास के साथ साथ विरासत को संजोकर आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत 557 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की। दिल्ली पुलिस ने खतरनाक चीनी मांझे की बिक्री और खरीद के खिलाफ विशेष अभियान के अंतर्गत 1100 से ज्यादा रोल बरामद किए। और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 34वां आम महोत्सव जारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा दुनिया के किसी देश ने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया है। नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि प्रस्तावना वो आधार है जिस पर संविधान विकसित हुआ, लेकिन विनाशकारी रूप से इसमें उस समय बदलाव किया गया जब आपातकाल के दौरान लोग लगभग पराधीन थे। श्री धनखड़ ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ना संविधान निर्माताओं की सोच के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि ये कृत्य हजारों वर्षों से इस देश की सभ्यतागत संपदा और ज्ञान को कमतर आंकने के अलावा कुछ और नहीं है। श्री धनखड़ ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोगों के दिलों में रहते हैं और उनके संदेश देशवासियों के लिए आज भी प्रासंगिक हैं।
The preamble of Indian Constitution is unique. The preamble has been imparted by we the people of India, except Bharat. Nobody's constitution's preamble has undergone change. And why? Preamble is not changeable. Preamble is not alterable. Preamble is the basis on which constitution has grown. Preamble is the seed of the constitution. It is soul of the constitution.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर आयोजित मॉक पार्लियामेंट में लोकतंत्र की हत्या के काले अध्याय पर अपने विचार साझा किए। इस मॉक पार्लियामेंट का आयोजन भाजपा दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा राजधानी के महाराष्ट्र सदन में किया गया था। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय और संविधान के मूल्यों का गला घोंटकर संविधान की हत्या कर दी थी।
संविधान की अवमानना करने वाले सत्ता हो या राजा हो, उसका दंश देश को झेलना पड़ता है। देश ने कह दिया है कि इसके बाद ऐसा कोई संकट देश पे ना आए, इसके लिए पूरा देश, पूरा समाज मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा।
दिल्ली विधानसभा में आज संविधान हत्या दिवस के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र और संविधान का सबसे अंधकारमय दौर, ना भूलें ना क्षमा करें विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, संवैधानिक विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित विद्वान शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आपातकाल का काला कालखंड भारत के हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करने वाला था। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के दौरान संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया।
कांग्रेस जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी की संविधान की जो मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और इमरजेंसी को लगाकर उसमें बदलाव करने का जो एक षड्यंत्र हुआ, वो साफ है कि कांग्रेस एक तानाशाह डिक्टेटरशिप पार्टी के रूप में साफ रूप से नजर आ रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने विचारों, दर्शन और ज्ञान के कारण हजारों वर्षों से शाश्वत बना हुआ है। आज नई दिल्ली में प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है और इस शाश्वत दर्शन का स्रोत देश के ऋषियों, संतों और आचार्यों में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य विद्यानंद मुनि इस प्राचीन भारतीय परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री विद्यानंद जी ने अपने जीवन को केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण का एक सशक्त माध्यम भी बनाया।
जिस दिव्य आत्मा की वाणी को, उनके वचनों को हम जीवन भर गुरु वाक्य मानकर उनसे सीखते हैं, जिनसे हमारे हृदय भावात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलना हमें भावुक कर देता है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि श्री विद्यानंद जी मुनिराज के बारे में बोलने की जगह काश हमें आज भी उन्हें सुनने का सौभाग्य मिलता।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार देश के सांस्कृतिक धरोहरों और तीर्थ स्थलों का भी विकास कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने पर भी जोर दिया।
हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल है। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं। विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेवा और मानवता के प्रति समर्पित देश है। उन्होंने कहा कि विश्व में जब हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने विश्व को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। प्रधानमंत्री ने 9 संकल्पों पर भी जोर दिया। इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है।
ऐसे महत्वपूर्ण समय में अब आज हम सब एकत्रित हुए, जब मानव को अपने भीतर भी, परिवार में भी, समाज में भी और राष्ट्रों के बीच में आपस में जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस जिस तरह का है, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में आचार्य श्री का दर्शन आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में लगभग 12,000 से अधिक डेयरियों से प्रतिदिन हजारों टन गोबर निकलता है और ये गोबर नालों के रास्ते यमुना नदी में चला जाता है। उन्होंने कहा कि इस विषय में पिछली सरकारों ने कोई कार्य नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिल्ली में बायो सीएनजी परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस पहल से यमुना को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी और हरित ऊर्जा के उत्पादन में भी योगदान मिलेगा।
2 साल के भीतर इन सभी बायो सीएनजी प्रोजेक्ट को हम बना करके खत्म करेंगे, ताकि कुछ भी गोबर का अंश जो है वो नालों में और नालों के माध्यम से यमुना जी में ना जा पाए। एक बड़ी समस्या जो डेयरी कॉलोनी वालों के लिए रहती है, यहाँ तक कि नगर निगम, क्योंकि वो सफाई नहीं हो पाती नाले नालियों में से, उस सबको समाधान मिलेगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत माहिरा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 557 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। जब्त की गई संपत्तियों में विभिन्न कंपनियों से संबंधित 7 अचल संपत्तियां और सावधि जमा रसीदें शामिल हैं। निदेशालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए कंपनी के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच के अनुसार कंपनी ने संबंधित संस्थाओं से फर्जी चालान के जरिए निर्माण लागत को बढ़ाकर धन की हेराफेरी करने और विकास कार्यों के लिए फर्जी बैंक गारंटी सहित जाली दस्तावेज जमा करने के आरोप थे। दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज जनता दरबार का आयोजन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि आज सुबह आयोजित जनता दरबार में क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनकर उन्होंने संबंधित विभागों को तुरंत समाधान के लिए निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर दिल्लीवासी की आवाज को सुनकर उसका समाधान समय पर किया जाए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह इस माह के अंत में नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
इस बैठक में सहकारिता क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, साथ ही सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचारों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। बैठक के दौरान ग्रामीण सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और डेयरी तथा मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना सहित सभी प्रमुख अभियानों पर चर्चा की जाएगी। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और किसानों को प्रबल बनाना है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 34वां आम महोत्सव जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आम महोत्सव में 400 से अधिक किस्मों के आमों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित ये महोत्सव गर्मी के मौसम में आम की रसीली मिठास लेकर आया है। महोत्सव में इस बार 400 से ज्यादा आमों की किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां आगंतुक आम सीधे किसानों से खरीद सकते हैं। आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए महोत्सव में विभिन्न प्रकार के आयोजन भी किए जा रहे हैं, जिसमें आम खाने की प्रतियोगिता, प्रतिदिन सुबह से शाम तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। इस महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया था। सभी दिल्लीवासियों को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव भारत की कृषि विविधता का उत्सव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को नई ऊर्जा देता है। महोत्सव में क्विज और स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों के लिए खास किड्स जोन भी बनाया गया है। इस महोत्सव में आगंतुक सुबह 11 बजे से रात 9 बजे के बीच कभी भी जा सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए INA मेट्रो स्टेशन से त्यागराज स्टेडियम तक मुफ्त शटल सेवा भी उपलब्ध है। कल इस महोत्सव का अंतिम दिन है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
आगामी स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा शहर में खतरनाक चीनी मांझे की बिक्री और खरीद के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पिछले 2 दिनों में शहर में प्रतिबंधित चीनी मांझे के 1100 से ज्यादा रोल बरामद किए हैं। मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि इन कार्रवाइयों में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
टाइम 15 अगस्त और रक्षाबंधन के टाइम में ज्यादा पतंगबाजी की जाती है, तो उसको देखते हुए हमने 1170 रोल है चाइनीज माजा का, उनको रिकवर किया है और 2 अक्यूज को अरेस्ट किया है। चाइनीज माजा का जो भी लोग यूज करते हैं उनके खिलाफ वहाँ पे हमें पुलिस को रिपोर्ट करें। ये दिल्ली में पहली बार तो बैंड है और इससे जानमाल का खतरा है। काफी इंसिडेंट पहले भी हो चुकी है और जैसा आपने बताया अभी भी हुई है।
दिल्ली के आकाशवाणी स्थित रंगभवन में संथाल स्वाधीनता संग्राम के अमर बलिदानियों को समर्पित कार्यक्रम हूल दिवस चल रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन माई होम इंडिया और वनवासी कल्याण आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने शहर के अशोक विहार इलाके से 5 ट्रांसजेंडर सहित 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार इनके पास से 7 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि इन मोबाइल फोन में भारत में प्रतिबंधित एक ऐप भी मिला है, जिसके जरिए ये लोग बांग्लादेश में अपने परिवार से बातचीत करते थे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 14 जुलाई को नई दिल्ली के फुटबॉल हाउस में उच्च प्रभाव प्रदर्शन विश्लेषण कार्यशाला का आयोजन करेगा। कार्यशाला का उद्देश्य भारतीय फुटबॉल में प्रशिक्षकों और विश्लेषकों की कार्य कुशलता और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना है। इस कार्यशाला में विशेषज्ञ वीडियो विश्लेषण सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट newsonair.gov.in और मोबाइल ऐप newsonair पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारण होगा। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज शाम बारिश हुई, जिससे शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकास के साथ साथ विरासत को संजोकर आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मथुरा में बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत 557 करोड़ रूपये से अधिक की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की। दिल्ली पुलिस ने खतरनाक चीनी मांझे की बिक्री और खरीद के खिलाफ विशेष अभियान के अंतर्गत 1100 से ज्यादा रोल बरामद किए और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 34वां आम महोत्सव जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।